इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो अब मैं पूछना चाहूंगी कि इसका इलाज और इसकी दवा इसका क्या करा जाता है?
वैसे तो जिस तरह मैंने बताया कि एक हफ्ते की मुद्दत के अंदर ये
जी
खुद ही
जी
ख़त्म हो जाता है, और अगर ये ख़त्म ना होकर ना हो ये अपनी शदीद किस्म अख्तियार कर ले, तो फिर हम एंटीवायरल कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिसिन जिसको हम डॉक्टर्स के पास मतलब जाना
जी
ज़रूरी है, खुद से नहीं ले सकते, तो फिर वो पहले उसको टेस्ट करेंगे कि वायरस कौन सा है, और फिर उस तरह से हमें वो ड्रग्स देंगे। एक जैसे मैंने बताया कि एच और एन प्रोटीन्स होती हैं,
जी
तो वो एक एंटीवायरल एंटीवायरल ड्रग होती है जो एन प्रोटीन इनहिबिटर के नाम से आती है। उसमें मतलब एन प्रोटीन्स को हटा देते हैं, मतलब उसके वो काम करने का तरीका है वो ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है रिप्लिकेशन, जो उसके वो बढ़ने का तरीका होता है वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ वायरल ड्रग्स हैं जो ली जाती हैं इनमें, मगर ये तब ली जाती हैं जब वो
जी
अपनी शदीद इख्तियार कर लेते
यानी
हैं,
एक हफ्ते से अगर ज्यादा हमारा
ज़्यादा हो
वायरल
जाए।
खत्म नहीं हो रहा है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएं,
जी फिर
इससे
उसके
पहले जरूरत नहीं जाने
इसके
की।
पहले ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत ही उसको ख़त्म कर दे, या जो हमने वैक्सीन वगैरह ली हुई है वो उसी से ख़त्म हो जाए। उसके अलावा हमें टेस्ट करने के जब हमें ड्रग्स देते हैं, तो उससे पहले हम कुछ टेस्ट वगैरह
जी
करते हैं, तो तीन तरह के हमारे पास टेस्ट होते हैं फ्लू के लिए, मगर वो भी यही है कि एक हफ्ते के बाद ही करवाया जाए जब इसकी बहुत ज़्यादा शरीर किस्म हो। तो उसमें ये होता है कि एक तो रैपिड इन्फ्लुएंजा वायरस डायग्नोसिस होता है, जिसके अंदर हमें एक कॉटन होती है, रुई को हम हलक के अंदर डालते हैं, उसके अंदर कुछ जो वायरस वहाँ पे जो बैठे हुए होते हैं
अच्छा
उनको ले लेते हैं, और फिर उसको हम चेक करते हैं, और उसका रिजल्ट जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है, इसी वजह से इसको रैपिड कहा जाता है कि 30 मिनट के अंदर हम इसका
अच्छा
रिजल्ट आ जाता है। मगर ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसमें हम बता नहीं सकते, हमें पता तो चल जाता है कि कौन सी टाइप है, जैसे टाइप ए बी या सी है, मगर हमें पता नहीं चलता कि कौन
कितना
सा उसमें प्रोटीन्स कौन कौन से मौजूद हैं,
अच्छा
तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट करने के लिए जो दूसरे हमारे पास टेस्ट हैं, मगर वो थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं, मगर उसके अंदर वायरल कल्चर आ जाता है, जिसमें हम वायरसेस को लेकर फिर उसका हम कल्चर उसको बढ़ा कर अपने आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, और फिर उसमें देखते
तो
हैं,
क्या
या
मतलब आप ब्लड लेते हैं उसमें वायरस होता है या वैसे ही लेते
वैसे
हैं?
ही
अच्छा
वायरस लेकर और उसके बाद फिर उसको कल्चर करके बढ़ाया जाता है, और जो सैंपल होता है उसमें
जी
ज़्यादा वायरस जब पता चलते हैं तो उसको स्टडी किया जाता है कि कौन सा वायरस है। तीसरा
अच्छा
होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम कुछ रिएक्शन वगैरह करवाते
अच्छा
हैं, और इसमें यही होता है कि मतलब इस तरह से हमें पता चल जाता है वायरस की कौन सी इकसाम मौजूद है, और फिर उसी के लिहाज से हम उसको ड्रग्स वगैरह देते हैं।
इसमें घरेलू टोटके आपने कहा जैसे एक हफ्ते तक हमें ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के जाने
जी
के लिए, तो घर वाले क्या करें, खाने पीने में कुछ परहेज़ या और
जी
चीज़ों में कुछ परहेज़ क्या चाहिए?
परहेज़ वगैरह जो वही मामूली तौर पे होता है, जैसे उसकी जो अलामत होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जिस्म का दर्द हो रहा है, शदीद बुखार है, या नज़ला खांसी वगैरह, ये जो उसकी अलामत में आती हैं, तो इनसे मतलब इसको अपनी शदीद किस्म अख्तियार करने से बचाने के लिए जो हमें एहतियाती तदाबीर से खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना, ठंडे पानी से परहेज़ करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। कुछ लोग होते हैं जो फ्लू के दौरान जो होते हैं घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कि ये मतलब लौंग का पानी या कुछ वो भाप वगैरह, तो ये सारी जो होती हैं ये वायरस को कुछ नहीं कर रही होती हैं, जो अलामत होती हैं ये उनको कम कर रही होती हैं, तो इसका असरअंदाज में घरेलू टोटके का सारा जो असर होता है वो सिर्फ ये अलामत को कम करने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि हम या तो इस तरह कर सकते हैं, या तो हम कुछ छोटी मोटी पेन किलर या पैरासीटामोल ले लें उसके अलावा, मगर इसका जो असर है कोई वायरस के ऊपर खुद के ऊपर नहीं होता। तो अगर वायरस फिर भी एक हफ्ते में ख़त्म नहीं हो रहा है, तो फिर हमें ये एंटीवायरल ड्रग्स चाहिए होती हैं, या इस तरह के हमें ऐसे ट्रीटमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं जिससे हमें, या वैक्सीनेशन वगैरह चाहिए होती हैं।
वैक्सीनेशन की बात है, एक हमने बात की थी, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, वैक्सीनेशन आमतौर पर ऐसा होता है कि अभी आपने सुना कि वायरस फैल रहा है तो आपने लगवा लिया जाके, अब हो सकता है आपको हल्का हल्का महसूस हो रहा हो कि हाँ नज़ला हो रहा है या हल्की हल्की खांसी आ रही है, तो क्या उस वक्त जाके वैक्सीनेशन लगवाया जा सकता है या नहीं?
लगवाया तो जा सकता है, मगर
एक बार
वायरस अगर जिस्म में दाखिल हो चुका है तो फिर वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं होता, मगर वो बाद के लिए अगर उसके दोबारा वायरस आए तो उसके लिए तो हो सकता है, मगर जब एक बार वायरस जिसके अंदर दाखिल हो चुका है तो वैक्सीनेशन का तब कोई असर नहीं होता। वैक्सीनेशन चाहे ये फ्लू की हो या कोई भी वैक्सीनेशन हो, बीमारी से पहले अगर लगवा ली जाए तो फिर उसका असर होता है, ताकि वो आपको उस बीमारी में मुब्तला होने ही नहीं देती। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि वायरस के दाखिल होने से 2-3 दिन बाद ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, तो कभी ऐसा हो कि वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो चुका है और सिम्टम्स ज़ाहिर ना हुए हो उससे पहले भी अगर जिसमें मेरे जिस्म के अंदर वायरस है, मगर मैं अपना वायरस किसी और पे मुंतकिल कर सकती हूँ,
अच्छा।
चाहे अलामत मेरे ऊपर जाहिर ना हुई हो, अगर
अच्छा।
मेरे से मेरा कुछ झूठा किसी ने پانی وغیرہ پی لیا تو اس کو اس طرح منتقل ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے مطلب بہت جلدی سے یہ وائرس پھیلتا ہے.
اچھا.
اور اس کی تدابیر وغیرہ بس یہ ہیں کہ کوئی اس طرح کوئی پراپر ڈرگ نہیں ہے, یا ویکسینیشن بھی اس کی کوئی ایکوریٹ نہیں ہے. ایک بار ویکسینیشن کروا لیں تو اگلے سال آپ کو دوبارہ سے کروانی پڑے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ویکسینیشن کا کم اثر ہوتا ہے, جیسے حاملہ خواتین ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا, یا کچھ کچھ لوگ جن کو فوڈ الرجیز وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے قوت مدافعت کی کچھ کمی ہوتی ہے, یا آٹو امیون ڈیزیز جن کو ہوتے ہیں جیسے ڈائبٹیز وغیرہ, تو ان لوگوں کو یہ ویکسینیشن کا اثر نہیں ہوتا, یا ہم ان لوگ کو ویکسین بھی نہیں لگاتے کیونکہ ان کے اوپر کوئی دوسرا اثر نہ ہو جائے. تو اور یا چھ سال کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر ویکسین نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری مطلب ان سب چیزوں کو دیکھ کے ویکسین کرواتے ہیں.